आगे सबक देखिए भाई, वईदा कानल अब्दु बैन शरीकैन फआतक अहदुहुमा नसीबहु अतक फइन कान मूसिरन फशरीकुहु बिलखियार इन शाअ अअतक व इन शाअ ज़म्मन शरीकहु क़ीमत नसीबिही व इन शाअ अस्तसअल अब्द فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما. भाई गुजश्ता सबक में साहिब हिदायत ने बतलाया था कि अगर गुलाम के कुछ हिस्से को आजाद कर दिया जाए, यानी कुछ हिस्से का एताक किया जाए, तो इसमें साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है. इमाम साहिब के नजदीक एताक जो है उसकी तजज्जी हो सकती है, यानी वो तकसीम हो सकता है कि कुछ गुलाम को आजाद किया जाए और कुछ को आजाद न किया जाए, ये हो सकता है. जबकि साहिबैन के नजदीक एताक की तजज्जी नहीं हो सकती. और चुनांचे अगर गुलाम के कुछ हिस्से की तरफ एताक की निस्बत की तो ये इसी तरह होगा गोया सारे गुलाम की तरफ एताक की निस्बत कर दी तो सारा ही गुलाम आजाद हो जाएगा. साहिबैन की दलील ये है, साहिबैन फरमाते हैं कि एताक जो है वो इस बातुल इत्क का नाम है. मैंने आपको बतलाया था कि एक है एताक और एक है इत्क. भाई एताक मलजूम है और इत्क उसके साथ लाजिम है. जब भी गुलाम को आजाद किया जाएगा तो इत्क आ जाएगा, यानी आजादी आ जाएगी. तो साहिबैन फरमाते हैं कि एताक नाम है इस बाते इत्क का, यानी आजादी को साबित करना. और इत्क के अंदर तो इमाम साहिब भी हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं कि इत्क की तकसीम नहीं हो सकती. याद रखो एक है इत्क और एक है रिक, यानी गुलामी. तो इत्क और रिक दोनों के अंदर साहिबैन और इमाम साहिब का इत्तेफाक है कि इनकी तकसीम नहीं हो सकती. तो साहिबैन फरमाते हैं ये जो इत्क है ये लाजिम है एताक के साथ. तो जब लाजिम के अंदर तकसीम नहीं हो सकती तो इस लाजिम का जो मलजूम है यानी एताक उसमें भी तकसीम नहीं हो सकती. तो साहिबैन दलील जिक्र फरमाते हैं कि एताक वो नाम है इस बातुल इत्क का. और इत्क जो है कुव्वत हुक्मिया का नाम है कि जब कोई गुलाम आजाद होता है तो उसको कुव्वत हासिल हो जाती है, वो अपनी जात का मालिक बन जाता है, उसे हर तरह के तसर्रुफात का इख्तियार मिल जाता है. तो आजादी जो है वो कुव्वत हुक्मिया का नाम है. जबकि इसके मुकाबले में रिक यानी गुलामी जो है वो ज़ौफ़ हुक्मी का नाम है, यानी जिस शख्स में रिक है उसमें हुक्म के एतबार से ज़ौफ़ है, यानी उसको किसी किस्म की विलायतें हासिल नहीं है. भाई तो साहिबैन जिक्र फरमाते हैं कि एताक नाम है इस बातुल इत्क का. और इस बातुल इत्क जो है वो तब होगा जब इजाला रिक हो, इसलिए क्योंकि इत्क और रिक दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे की जिद हैं. जैसे एक ही चीज एक ही मकाम पर सफेद भी हो जाए और काली भी हो, ऐसा नहीं हो सकता. एक मकाम पर एक वक्त में एक ही रंग होगा या सफेद होगा या काला. इसी तरह इत्क और रिक एक दूसरे की जिद हैं. तो इत्क तभी आ सकता है जब रिक खत्म हो. और जैसे रिक के अंदर तकसीम नहीं हो सकती इसी तरह इत्क के अंदर भी तकसीम नहीं हो सकती. तो इत्क तभी आएगा जब रिक खत्म हो जाएगा, और जब रिक खत्म हुआ तो पूरा गुलाम आजाद हुआ. वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे तलाक है कि उसके अंदर भी तकसीम नहीं हो सकती. लिहाजा खावंद अगर अपनी निस्फ बीवी को भी तलाक देगा तो पूरी बीवी को तलाक हो जाएगी. या ये इसी तरह है जैसे किसास को मुआफ करना, जैसे मकतूल के औलिया में से कोई एक भी अगर किसास को माफ कर देगा तो किसास साकित हो जाएगा क्योंकि किसास के अंदर तकसीम नहीं हो सकती. भाई और नीज ये इसी तरह है जैसे उम्मे वलद बनाना, उम्मे वलद बनाने के अंदर भी तकसीम नहीं हो सकती. एक शख्स बांदी को उम्मे वलद बनाएगा तो सारी बांदी ही उम्मे वलद बनेगी, ऐसा नहीं कि कुछ हिस्सा उम्मे वलद हो और कुछ हिस्सा उम्मे वलद ना हो. जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि हमें आपकी बात तस्लीम है, इताक वो नाम है इस बातुल इत्क का, लेकिन आपने कहा इस बातुल इत्क होगा इजाला रिक के जरिए, गुलामी खत्म करके इस बात इत्क होगा, हमें यह बात तस्लीम नहीं है, बल्कि इस बात इत्क होगा इजाला मिल्क के जरिए कि मिल्कियत खत्म कर दे, कि मालिक उस गुलाम पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर दे। तो लिहाजा इताक नाम हुआ इस बात इत्क का बजरिया इजाला मिल्क के, या यूं कहें कि इताक वो इजाला मिल्क ही का नाम है। वजह यह कि कोई शख्स वही तसर्रुफ कर सकता है जिसकी उसको विलायत हासिल हो, और आका का हक गुलाम के अंदर सिर्फ उसकी मिल्कियत है, वो सिर्फ अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ कर सकता है, और जबकि गुलामी गुलामी तो आका का हक ही नहीं है, यह तो शरीयत का हक है, या यह आम मुसलमानों का हक है। शरीयत का हक इस तरह है कि यह शख्स जिसको मुसलमानों ने गुलाम बनाया है, इसने दीन इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, तो इसने अल्लाह की गुलामी कबूल करने से इनकार किया। जब इसने अल्लाह की गुलामी कबूल करने से इनकार किया तो अल्लाह ने इसे अपने गुलामों का गुलाम बना दिया, अपने बंदों का बंदा बना दिया। तो मालूम हुआ यह गुलामी शरीयत का हक है, यह मालिक का हक नहीं, या यूं कहें कि यह गुलामी जो है यह आम मुसलमानों का हक है। वजह यह कि आम मुसलमानों ने मिलकर इसको कैद किया था जंग के दौरान, तो और उसको गुलाम बनाया था, तो इसको अकेले इस मालिक ने कैदी नहीं बनाया, तमाम मुसलमानों ने मिलकर कैदी बनाया, और फिर उसके बाद तकसीम के अंदर ये किसी एक के हिस्से में आ गया। तो इसके अंदर जो गुलामी है वो आम मुसलमानों का हक है भाई, लिहाजा वो आका का हक ही नहीं है, लिहाजा आका इजाला रिक कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ इजाला मिल्क कर सकता है, अपनी मिल्कियत खत्म कर सकता है। और नीस जाबता है कि तसरुफ जितने महल में किया जाए वो अपने महल पर बंद रहता है, वो अपने महल से तजावुज सिर्फ उसी वक्त करता है जब उसमें तकसीम ना हो सके। जैसे तलाक जो है, एक शख्स अपनी आधी बीवी को तलाक देता है, लेकिन तलाक तो ऐसा तसरुफ है जिसमें तकसीम हो ही नहीं सकती, तो जब तकसीम नहीं हो सकती तो मजबूरन फिर सारी औरत पर ही तलाक वाकई होगी। तो जब तसर्रुफ की तकसीम हो सके तो फिर इस सूरत में वो बाकी हिस्से की तरह मुतअद्दी नहीं होगा। और यहां जो इताक है वो इजाले मिल्कियत का नाम है, और मिल्कियत तो काबिल तकसीम है कि एक शख्स जो है अपने आधे गुलाम को बेच दे, तो देखो उसने आधे गुलाम पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर दी, और चाहे तो पूरे गुलाम को बेच दे। तो मिल्कियत और इजाला मिल्कियत जो है इनमें तो तकसीम हो सकती है, और इताक भी इजाला मिल्कियत ही का नाम है, लिहाजा उसमें भी तकसीम हो सकती है, और वो अपने महल पर ही बंद रहेगा जी। उसको बाकी हिस्से की तरह मुतअद्दी करने की जरूरत नहीं, मुतअद्दी तभी होगा जब उसमें तकसीम ना हो सके भाई, और इताक में तो तकसीम हो सकती है। और फिर साहिबे हिदाया ने यह भी बतलाया था कि गुलाम का जब कुछ हिस्सा आजाद कर दिया गया तो इमाम साहब के नजदीक ये अभी भी गुलाम है, उसके निसफ पर से मिल्कियत खत्म हुई है और निसफ पर से अभी भी मिल्कियत खत्म नहीं, लिहाजा आका उससे साई करवा सकता है कि काम काज करे और अपने बकिया हिस्से की कीमत अदा करके पूरा ही आजाद हो जाए। मैंने आपको बतलाया था कि जब गुलाम के कुछ हिस्से को आजाद कर दिया जाए तो अब उसको गुलाम बनाकर रखना जायज नहीं, अब उससे खिदमत नहीं ली जा सकती, बल्कि वो मुकातब के दर्जे में हो गया, जाएगा और जाकर पैसे कमाएगा और अदायगी करके अपने आप को आजाद करवा देगा। तो लिहाजा आका ने जब निस्फ गुलाम को आजाद किया है तो निस्फ गुलाम के अंदर आका की मालियत बंद हो गई, बाकी निसब भी आका का है और वो माल है लेकिन वो बंद हो गया। अब ये जो गुलाम है इसको गुलाम बनाकर भी नहीं रखा जा सकता और इसको आगे बेचा भी नहीं जा सकता, तो लिहाजा आका की मालियत बंद हो गई गुलाम के अंदर कुछ हिस्से के अंदर, तो आका उससे सही करवा सकता है कि वो जाए जाकर पैसे कमाकर लाकर आका को दे और अपनी पूरी जात को आजाद करवा ले, और ये इमाम साहब के नजदीक मुकातब के दर्जे में होगा। वजह यह कि यहां पर दोनों तरफ की दलीलें मौजूद हैं, एक दलील तकाजा करती है कि इस गुलाम को अब आजाद होना चाहिए, जैसे साहिबैन में जिक्र किया क्योंकि इत्क आ रहा है और इत्क की तो तकसीम नहीं हो सकती, लिहाजा यह तकाजा करता है कि गुलाम जो है अपनी पूरी जात का मालिक हो जाए, वो जिस तरह तसरुफात करना चाहे कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके कुछ हिस्से में आका की मिल्कियत बाकी है, मालूम हुआ रिक यानी गुलामी बाकी है और गुलामी जो है वो भी तकसीम को कबूल नहीं करती, ये तकाजा करती है कि पूरी जात ही ममलूक है भाई और गुलाम है। तो एक तरफ देखें तो इत्क आ रहा है, दूसरी तरफ देखें तो रिक बाकी है, इत्क भी तकसीम को कबूल नहीं करता, रिक भी तकसीम को कबूल नहीं करती, तो यहां दोनों दलीलें मौजूद हैं, तो हमने दोनों पर अमल किया क्योंकि यहां दोनों पर अमल करना मुमकिन है, एक दरमियानी सूरत है और वो ये कि इस गुलाम को मुकातब करार दे दिया जाए, यानी मुकातब के दर्जे में हो जाए। और मुकातब जो है वो अपनी जात का मालिक होता है, यानी वो हर तरह के तसरुफात कर सकता है, लेकिन अपने रकबा के एतबार से वो गुलाम ही होता है भाई। तो लिहाजा ये गुलाम भी कब्जे के एतबार से, तसरुफ के एतबार से आजाद की तरह होगा और रकबा के एतबार से ये गुलाम की तरह होगा भाई। तो लिहाजा ये जाएगा, जाकर पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तो बाकी का निसब मुकातब बन गया, लेकिन आका उस बाकी निसब को भी आजाद कर सकता है क्योंकि मुकातब को भी आजाद करना जायज है, और नीज आका उसे सही भी करवा सकता है कि पैसे कमा कर लाओ। अलबत्ता एक फर्क है मुकातब से कि मुकातब जब कमाई से आजीज आ जाता है तो वो फिर पहले जैसा आम गुलाम बन जाता है, लेकिन ये वाला जो मुकातब है ये अगर अपनी कमाई से आजीज आ जाएगा ये फिर पहले की तरह गुलाम नहीं बनेगा। वजह यह एक है किताबत मकसूदा और एक है किताबत गैर मकसूदा। वो थी किताबत मकसूदा यानी जिसका बाकायदा इरादा किया गया था, आका ने अपने गुलाम से कहा था कि तुम 2 साल में 20 लाख रुपए ले आओ तो तुम आजाद हो, और गुलाम ने इसको कबूल कर लिया था, तो ये दोनों के दरमियान आक्द हुआ था। तो किताबत मकसूदा के अंदर आका और गुलाम के दरमियान बाकायदा आकद होता है और आकद को तो फसख किया जा सकता है, लिहाजा वहां पर अगर मुकातब पैसे कमाकर न ला सका तो वो आकद जो है उसको फसख करार दिया जाएगा और वो गुलाम पहले की तरह आम गुलाम बन जाएगा। जबकि यहां पर आका ने जो गुलाम के निसफ हिस्से को आजाद किया है वो इसकात है, उसने अपनी उस निसफ हिस्से से अपनी मिल्कियत जाहिर की है, और इसकात जो है वो फसख को कबूल नहीं करता। खावंद अपनी बीवी को तलाक दे दे, तलाक इसकात का नाम है, और बाद में खावंद उस तलाक को फसख करना चाहे, नहीं भाई, आकद को तो फसख किया जा सकता है, आकद 2 आदमियों के दरमियान एक मामले और मुआहदे का नाम होता है, आकद को तो फसख किया जा सकता है लेकिन इसकात को फसख नहीं किया जा सकता। और यहां पर भी आका ने निस्फ गुलाम को वैसे ही आजाद किया था, तो ये इसकात ला इला अहद था, यानी किसी फर्द के लिए इसकात नहीं किया बल्कि वैसे ही इसकात किया था। तो लिहाजा ये जो मुअतकुल बाज है ये अगर कमाई से आजिज आ गया तो ये फिर पहले की तरह आम गुलाम फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एताक है ये इसकात है और ये फसख को कबूल नहीं करता। बात समझ में आ गई। और साहिबैन ने एताक के लिए 3 नजीरें जिक्र फरमाई थी कि एताक तजजी को कबूल नहीं करता, तकसीम को कबूल नहीं करता, जैसे तलाक तकसीम को कबूल नहीं करती, जैसे किसास तकसीम को कबूल नहीं करता, और जैसे इस्तीलाद यानी उम्मे वलद बनाना तकसीम को कबूल नहीं करता। तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने इमाम साहिब की तरफ से कि तलाक और किसास से मुआफी वहां कोई मुतवस्सित हालत नहीं थी, वहां वो कोई मुतवस्सित हालत नहीं थी, तो वहां हमने सारे के अंदर ही वो हुक्म साबित कर दिया मुहर्रिम को तरजीह देते हुए। मैंने आपको बतलाया था कि अगर किसी मसले में 2 दलीलें जमा हो जाएं, एक दलील मुहर्रिम है जो उसको हराम करार दे रही है और एक दलील जो है वो मुबीह है जो उसको मुबाह करार दे रही है, तो इस सूरत में मुहर्रिम दलील को तरजीह होगी क्योंकि उसमें एहतियात ज्यादा है भाई। तो यहां पर भी मुहर्रिम को तरजीह दी गई और किसास को हराम करार दे दिया गया कि जब मकतूल के अवलिया में से बाज ने भी माफ कर दिया है अब किसास नहीं लिया जा सकता, और खावन ने बीवी को कुछ हिस्से को भी तलाक दी है तो वो हिस्सा खावन पर हराम हो गया है, तो इसी मुहर्रिम को हमने तरजीह दी और सारी बीवी को ही खावन पर हराम करार दे दिया भाई। जबकि इस्तीलाद उसमें तो इमाम साहब के नजदीक तकसीम हो सकती है, इस्तीलाद में इमाम साहब के नजदीक तकसीम हो सकती है, यहां तक कि अगर दो आदमियों के दरमियान एक बांदी मुश्तरका थी और दोनों ने उसको मुदब्बरा बना दिया कि हमारे मरने के बाद तू आजाद है। अब इन दोनों के लिए इस बांदी से सोहबत तो जायज नहीं, लेकिन इस बांदी ने कुछ अरसे बाद बच्चे को जन्म दिया और उन मालिकों में से एक ने दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो इस सूरत में याद रखो उसका हिस्सा जो है निस्फ बांदी है वो उम्मे वलद बन जाएगी, जबकि निस्फ बांदी उसी तरह दूसरे के लिए मुदब्बरा ही रहेगी। मालूम हो इस्तीलाद के अंदर तकसीम हो सकती है। भाई बात समझ में आ गई। जबकि दो अफराद में अगर कोई आम बांदी थी और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उनमें से एक ने दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो इस सूरत में ये उसकी उम्मे वलद हो जाएगी और इसको जमान देना पड़ेगा। तो बाकी हिस्से का भी जब ये जमान देगा तो यहां पूरी बांदी का ही ये मालिक हुआ तो पूरी बांदी ही उम्मे वलद बन जाएगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ۔ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک غلام ہے اور اس میں دو آدمی شریک ہیں، निसफ गुलाम एक आदमी का है और निसफ गुलाम दूसरे आदमी का है। अब इन दोनों में से एक शख्स ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया जी। तो ये जो आजाद करने वाला है इसको हम ताबीर करेंगे मुअतिक के साथ, इसने आजाद किया है, ये आजाद करने वाला है। और याद रखो दूसरे को हम ताबीर करेंगे साकित के साथ। साकित सुकूत से है, सुकूत का क्या माना, खामोशी, यानी इसने कोई फेल नहीं किया। तो साकित से यहां मुराद है गैर मौतिक, यानी जिसने कोई फेल वगैरह नहीं किया। भाई तो एक गुलाम दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है, उसमें दो आदमी शरीक हैं, एक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया जी। तो इमाम साहब के नजदीक एताक जो है वह काबिल तकसीम है, एताक तकसीम को कबूल कर लेता है, लिहाजा निसफ गुलाम तो आजाद हो गया। अलबत्ता निसफ गुलाम अभी भी दूसरे शख्स का ममलूक है भाई, ममलूक है। और यहां एक और अहम बात भी याद रखना, जब एक गुलाम के कुछ हिस्से को आजाद कर दिया जाए तो इस गुलाम को अब गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, ये इससे सही करवाई जा सकती है कि ये जाएगा जाकर पैसे कमाएगा और अदा करके अपने आप को आजाद करवाएगा, ये मुकातब के दर्जे में हो गया जैसे कि पिछले मसले में बयान हुआ। तो जब भी एक गुलाम के कुछ हिस्से को आजाद कर दिया जाए तो अब इसको गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। और नीज याद रखना कुछ हिस्से का तो मालिक दूसरा आदमी अभी भी है, लेकिन यह हिस्सा फासिद हो चुका है, ये इसको आगे नहीं बेच सकता, किसी दूसरे को इस हिस्से का मालिक नहीं बना सकता। मालूम हुआ जब एक गुलाम के कुछ हिस्से को आजाद कर दिया जाए तो बाकी हिस्से के अंदर जो मिल्कियत है वो भी फासिद हो गई, वो भी खराब हो गई, क्योंकि अब इस आदमी को गुलाम बनाकर भी नहीं रखा जा सकता और इसको आगे अब बेचना या हिबा करना भी जायज नहीं है। तो सूरत यह बयान हो रही थी कि एक गुलाम है, दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है, उन दोनों में से एक ने अपने हिस्से के गुलाम को आजाद कर दिया। तो याद रखो इसमें मुअतिक को देखा जाएगा कि वो मालदार है या तंगदस्त है। अगर तो मुअतिक मालदार है, यानी जिसने अपने हिस्से को आजाद किया, यह शख्स मालदार है, तो दूसरा शरीक इसे जमान ले सकता है। दूसरा शरीक क्या कर सकता है, इस मुअतिक मुसिर, मुसिर का क्या माना, खुशहाल, मालदार। ये मुअतिक अगर मालदार है तो साकित इस मुअतिक से जमान वसूल कर सकता है कि तुमने मेरा हिस्सा भी गुलाम के अंदर खराब कर दिया, अब मैं इसको गुलाम बनाकर भी नहीं रख सकता और आगे मैं इसको बेच भी नहीं सकता। तो साकित जो है मुअतिक मुसिर से, यानी मालदार मुअतिक से जमान वसूल कर सकता है, लेकिन अगर मुअतिक जो है वो तंगदस्त है, उसके पास सिर्फ यही माल था, यही गुलाम के अंदर ही उसका कुछ हिस्सा था और माल वगैरह उसके पास नहीं है, तो फिर इस सूरत में याद रखो वो जो साकित है वो इस मुअतिक मुअसिर, मुअसिर का माना तंगदस्त, वो जो साकित है वो इस मुअतिक मुअसिर से जमान नहीं ले सकता, वो इससे जमान नहीं ले सकता। बहरहाल इतना याद रखें कि अगर मुअतिक खुशहाल है, मालदार है, तो उससे जमान लिया जा सकता है क्योंकि उसने दूसरे के हिस्से को खराब कर दिया, लेकिन अगर वो तंगदस्त है तो फिर उससे जमान नहीं लिया जा सकता। और नीज मुअतिक ने अपना हिस्सा आजाद किया है और इताक के अंदर इमाम साहब के नजदीक तकसीम हो सकती है, तो लिहाजा जो साकित है उसको इख्तियार है, उसको इख्तियार है, वो चाहे तो अपने हिस्से को भी आजाद कर दे। निसफ गुलाम एक ने आजाद किया था, निसफ को यह आजाद कर दे तो पूरा गुलाम ही आजाद हो जाएगा। तो साकित को इख्तियार है, यह अपने हिस्से को आजाद भी कर सकता है, मुअतिक अगर मालदार है तो उससे जमान भी ले सकता है, और यह चाहे तो गुलाम से सई भी करवा सकता है। इसलिए क्योंकि ये जो साकित है इसकी कुछ मालियत गुलाम के अंदर बंद हो गई है, गुलाम के अंदर इसका हिस्सा था, इसकी मिल्कियत थी, अब वो बंद हो गई, ये अब गुलाम से खिदमत भी नहीं ले सकता और नीज अब ये गुलाम को आगे बेचकर अपना माल भी वसूल नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये गुलाम से सई करवा सकता है कि गुलाम से काम काज करवाया जाए और उसके जरिए अपने हिस्से की कीमत वसूल कर ले। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा इमाम साहेब फरमाते हैं कि अगर एक गुलाम में दो आदमी शरीक थे और दोनों में से एक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया और यह आजाद करने वाला खुशहाल है, मालदार है, तो उसके शरीक को इख्तियार है, वो जो साकित है उसको इख्तियार है तीन चीजों में से जिसको भी वो इख्तियार करना चाहे, या तो वो साकित अपने हिस्से को भी आजाद कर दे या वो इस मुअतिक मुसिर से जमान वसूल कर ले या वो गुलाम से सई करवा ले। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर वो मुअतिक तंगदस्त है तो फिर इस सूरत के अंदर वो जो साकित है वो इस मुअतिक मुअसिर से जमान नहीं ले सकता। बाकी दो सूरतों का इख्तियार अभी भी उसको है। मुअतिक क्या है? तंगदस्त, और उसने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, तो साकित चाहे तो अपना हिस्सा भी आजाद कर दे और चाहे तो गुलाम से सई करवा ले और अपने हिस्से की कीमत वसूल कर ले गुलाम से। लेकिन ये मुअतिक से जमान नहीं ले सकता क्योंकि मुअतिक तो तंगदस्त है, उसके पास माल ही नहीं है, वो कहां से माल अदा करेगा भाई? बात समझ में आ गई? तो इमाम साहेब फरमाते हैं कि अगर एक गुलाम दो आदमियों के दरमियान मुश्तरक हो, मैं बार बार तकरार करवाऊंगा, ये बुनियादी जाबते हैं, अगर ये जाबते आपके जहन में जम गए तो फिर आगे तमाम मसाइल आसानी से आप निकालते चले जाएंगे, लेकिन अगर जाबते ही अच्छी तरह जहन नशीन न हुए फिर अगले मसाइल में और ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो जाबता याद रखें, एक तो जाबता गुजर गया पीछे कि इमाम साहब के नजदीक इताक में तकसीम हो सकती है और साहिबैन के नजदीक इताक में तकसीम नहीं हो सकती, और नीस इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर एक गुलाम दो आदमियों में मुश्तरक है और दोनों में से एक ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है तो इस मुअतिक को देखा जाएगा कि यह मुअतिक मालदार है या तंगदस्त है, अगर यह मालदार है तो इससे जमान भी वसूल किया जा सकता है और अगर ये तंगदस्त है तो फिर इससे जमान वसूल नहीं किया जा सकता। तो अब सूरत ये मुअतिक जो है खुशहाल है, मालदार है, तो साकित को तीन इख्तियार मिल गए, वो चाहे तो अपने हिस्से को भी आजाद कर दे, वो चाहे तो इस मुअतिक से जमान ले ले क्योंकि ये मुअतिक मालदार है, और वो चाहे तो गुलाम से सई करवा ले। लेकिन अगर मुअतिक तंगदस्त है तो फिर दूसरे साथी को सिर्फ दो इख्तियार हैं, या तो वो अपने हिस्से को भी आजाद कर दे या वो गुलाम से सई करवा ले क्योंकि उसकी कुछ मालियत गुलाम में बंद हो गई है, उसकी कुछ मालियत गुलाम में बंद हो गई है। बात समझ में आ गई? अब देखिए भाई किताब पर, साहिबैन इसमें इख्तिलाफ करते हैं, उनका मजहब आगे साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं वह ईदा कानल अब्दु बैन शरीकैनी, और जब एक गुलाम दो शरीकों के दरमियान था यानी उनके दरमियान मुश्तरक था, फआतका अहदुहुमा नसीबहू, तो उन दोनों में से एक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया, आताका तो उसका वो हिस्सा आजाद हो जाएगा, फ इन काना मुसिरन, अगर यह मौतिक जो है यह खुशहाल है, मालदार है, फशरीक हो बिल खियारी, तो इस मौतिक के शरीक को इख्तियार है, इंशा आतका व इंशा अजमन शरीक हो कीमत नसीबी ही व इंशा अस्तस अल अब्दा। ये वो तीन इख्तियारात हैं वो जिक्र फरमा रहे हैं। मौतिक कौन है? मालदार है, खुशहाल है। तो कहते हैं तो फशरीक हो बिल खियारी, तो इस मौतिक के शरीक को इख्तियार है, इंशा आतका, ये चाहे तो अपने हिस्से को आजाद कर दे, वह इंशा अजमन शरीक हो, और चाहे तो ये जो साकित है ये जामिन बना दे शरीक हो अपने शरीक को, यानी मौतिक को, ये साकित क्या कर दे अपने शरीक यानी मौतिक को, जामिन बना दे कीमत नसीबी ही अपने हिस्से की कीमत का, क्योंकि उस मौतिक ने इसका हिस्सा खराब किया है। अब ये गुलाम से खिदमत भी नहीं ले सकता और आगे उसको बेच भी नहीं सकता, लिहाजा उसने जिनायत की है, जुर्म किया है, तो ये उससे जमान वसूल कर सकता है अपने हिस्से की कीमत का। तो ये माना है वह इंशा अजमन शरीक हो, और अगर चाहे तो ये जामिन बना दे अपने शरीक को यानी मौतिक को, कीमत नसीबी ही अपने हिस्से की कीमत का, वह इंशा अस्तस अल अब्दा, और अगर चाहे तो गुलाम से सई करवा ले, चाहे तो गुलाम से सई करवा ले। तो ये तीन इख्तियारात हैं। फइन जमन रज अल मौतिक अल अब्दी, अब सूरत ये इधर देखिए भाई, मौतिक मालदार है, उसने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, तो उसका जो शरीक है साकित जो है वो इस मौतिक से जमान वसूल कर लेता है, मौतिक से जमान वसूल कर लेता है। जब इसने मौतिक से जमान वसूल कर लिया तो गोया इसके हिस्से का निसब जो है उसका मालिक भी मौतिक बन गया। मौतिक ने अपना हिस्सा तो आजाद कर दिया था और दूसरे शरीक ने क्या कर लिया, अपने हिस्से का भी इससे जमान वसूल कर लिया, तो जब इसने जमान वसूल कर लिया तो ये मौतिक उस हिस्से का भी मालिक बन गया। तो अब इस मौतिक का माल गुलाम के अंदर बंद है, अब इसका माल गुलाम के अंदर बंद है, लिहाजा ये अब गुलाम पर रुजू कर सकता है। ये चाहे तो बाकी गुलाम को भी वैसे ही आजाद कर दे, और चाहे तो गुलाम पर रुजू करे और कहे कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना माल अदा करना पड़ा, जाओ जाकर पैसे कमा कर लाओ और मेरा यह माल अदा करो। मालूम हुआ मौतिक मुसिर अगर उससे जमान ले लिया जाए तो वो गुलाम से सई करवा सकता है, क्योंकि पहले साकित की मालियत बंद थी गुलाम के अंदर और अब मौतिक की मालियत बंद हो गई गुलाम के अंदर। तो जैसे साकित सई करवा सकता था इसी तरह ये मौतिक भी सई करवा सकता है। तो कहते हैं फइन ज़म्मना, अगर इसने जामिन बनाया मौतिक को, रजअ अल मौतिक अल अब्दी, तो रुजू कर सकता है मौतिक अल अब्दी गुलाम पर, मौतिक गुलाम पर रुजू कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना माल अदा करना पड़ा, आप जाओ पैसे कमा कर लाओ और अपने निसफ हिस्से की कीमत मुझे अदा करो भाई। तो कहते हैं फइन ज़म्मन रजअ अल मौतिक अल अब्दी, अगर साकित ने जामीन बना दिया मौतिक को, तो रजअ अल मौतिक अल अब्दी, तो मौतिक जो है गुलाम पर रुजू कर सकता है। वल वला उलिल मौतिक, और वला जो है वो मौतिक के लिए होगी। वला का लफ्ज अच्छी तरह समझ लें भाई, ये फिका की किताबों में जगह जगह वला का लफ्ज आता है और तुलबा परेशान होते हैं कि मालूम नहीं वला किसे कहते हैं। याद रखना भाई, वला मीरास का नाम है, वला मीरास, वो जो माले वरासत मिलेगा उसको वला कहते हैं। आपने इल्मे मीरास में पढ़ा होगा कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसका माल फौरन ही वारिसों में तकसीम नहीं किया जाता, सबसे पहले उस मरने वाले के कफन दफन का इंतजाम किया जाता है उसी के माल में से, फिर उसके बाद अगर इस मरने वाले पर कोई कर्जे वगैरह थे तो वो कर्जे वगैरह इसके माल के जरिए अदा किए जाएंगे, चाहे इन कर्जों की अदायगी में सारा माल ही क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन वो कर्जे पहले अदा किए जाएंगे ताकि इस मैयत की आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएं भाई। और फिर अगर कर्जे अदा करने के बाद भी माल बच गया तो अब देखेंगे तीसरे नंबर पर कि इस मरने वाले ने कोई वसीयत तो नहीं की थी किसी के लिए कि मेरे मरने के बाद इतना माल फलां को दे देना। तो सबसे पहले कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा, फिर उसके बाद कर्जे अदा किए जाएंगे, अब जो माल बच गया है उसके तीसरे हिस्से में वसीयत नाफिस कर दी जाएगी। मसलन इसने कहा था मेरे मरने के बाद 10 लाख जैद को दे देना, तो अब देखा गया तो इसका तो सारा माल ही 9 लाख है भाई, कर्जों वगैरह की अदायगी के बाद सारा माल कितना बचा, 9 लाख, और इसने तो वसीयत 10 लाख की थी। तो याद रखो अब वसीयत, सारी वसीयत नाफिज नहीं की जाएगी, क्योंकि इस माल के अंदर वारिसों का भी हक है भाई, तो सिर्फ तीसरे हिस्से के अंदर वसीयत नाफिज कर दी जाएगी, और 9 लाख का तीसरा हिस्सा बनता है 3 लाख, तो 3 लाख जैद को दे दिए जाएंगे और 6 लाख ये वारिसों का हक है। हाँ, अगर वारिस इजाजत देते हैं कि नहीं सारा माल ही चाहे जैद को दे दो, तो वो सारे के सारे 9 लाख ही किसको दे दिए जाएंगे, जैद को। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा किसी शख्स के मरने पर सबसे पहले उसके माल में से उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, फिर उसके कर्जे अदा किए जाते हैं चाहे सारा माल ही क्यों ना खत्म हो जाए, और फिर जो माल बच जाए उसके अंदर उसकी वसीयत नाफिज की जाती है सुलुस तक, तीसरे हिस्से तक, और फिर जो बाकी माल बचे वो वारिसों में तकसीम किया जाता है। और वारिस भी आपने पढ़ा है कई किस्म के हैं, कुछ वारिस हैं जिनको जवील फुरूज कहते हैं, जिनके हिस्से बाकायदा शरीयत के अंदर मुकर्रर हैं
जी।
जिनके बाकायदा हिस्से शरीयत के अंदर मुकर्रर हैं उनको जवील फुरूज कहते हैं। फुरूज जमा है फर्ज की, और फर्ज का माना है हिस्सा, जवील फुरूज हिस्सों वाले, जैसे जू माल का क्या माना, माल वाला, तो जवील फुरूज हिस्सों वाले। तो सबसे पहले जवील फुरूज के अंदर माल तकसीम किया जाता है, उसके बाद अगर माल बच जाए तो फिर वो असाबात में तकसीम किया जाता है। दूसरे नंबर पर असाबात आते हैं, असाबात से मुराद वो मर्द हैं कि मैयत के साथ उनका रिश्ता जोड़ने में दरमियान में किसी औरत का वास्ता ना आए, जैसे मरने वाले का बेटा, उसका पोता, पड़पोता वगैरह, देखो दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं, या मरने वाले के बाप, दादा, परदादा, ऊपर तक, यहां भी दरमियान में किसी किस्म का औरत का वास्ता नहीं, या इसी तरह मरने वाले का भाई है, भाई के साथ रिश्ता जो है मां के वास्ते से भी है और बाप के वास्ते से भी है, तो यहां बाप का वास्ता मोतबर है, बगैर औरत के वास्ते के भाई के साथ रिश्ता है। फिर इसी तरह भाई के नीचे मुजक्कर औलाद है, यानी भतीजे और उनकी नीचे मुजक्कर औलाद, ये सारे असाबात में दाखिल हैं। और इससे फिर ऊपर जाएंगे तो फिर चचा है, देखो चचा के साथ रिश्ता बाप और दादा के वास्ते से है, दरमियान में कोई औरत नहीं, और फिर इसी तरह चचा के नीचे जो मुजक्कर औलाद है, तो ये सारे असाबात हैं। तो लिहाजा जब वारिसों में माल तकसीम किया जाएगा तो सबसे पहले जवील फुरूज को माल देंगे, फिर अगर माल बचता है तो वो माल असाबात ले जाते हैं, और इनको असबा नसबी कहते हैं, क्योंकि ये वो असबात हैं जिनके साथ नसब वाला रिश्ता है, तो लिहाजा ये माल असबा नसबी को देंगे। लेकिन अगर असबा नसबी कोई नहीं और माल बचा हुआ है तो फिर तीसरे नंबर पर असबा सबबी आता है, और याद रखो असबा सबबी मुअतिक को कहते हैं, असबा सबबी मुअतिक को कहते हैं, मौतिक आजाद करने वाला, यानी अगर ये मैयत किसी जमाने में गुलाम थी और इसको किसी ने आजाद कर दिया था, तो ये जो मौतिक है वो इसका आसाबाए सबबी है
जी।
और ये जो मरने वाले के अगर और रिश्तेदार नहीं है, जवील फुरूज नहीं है, इल्या है तो, लेकिन उनसे माल बच गया और आसाबात नसबी भी कोई नहीं है, तो फिर तीसरे नंबर पर आसाबाए सबबी को यह सारा माल मिल जाएगा। तो असबा सबबी यानी मुअतिक को ये जो माल मिला है इसको वला कहते हैं
जी।
इसको वला कहते हैं। तो मालूम हुआ वला माले मीरास का नाम है, और मुअतिक को मीरास इसलिए मिलती है क्योंकि मुअतिक ने इस शख्स को जिंदगी दी थी। देखो गुलामी मौत की तरह है और आजादी जिंदगी की तरह है। जैसे बाप जो है इंसान का वारिस बनता है, बाप वारिस बनता है क्योंकि बाप उस शख्स की जिंदगी का सबब बना, बाप ने उसको जिंदगी दी थी, इसी तरह ये जो मुअतिक है इसने भी इस गुलाम को आजाद करके इसको जिंदगी दी थी, लिहाजा ये भी उसका वारिस बनेगा। तरतीब समझ में आ गई। वला किस चीज का नाम है? वला माले मीरास का नाम है। और फिर एक और कीमती बात याद रखना वला के बारे में कि वला मुअतिक को मिलती है, चाहे इस मुअतिक ने बगैर इवज के गुलाम को आजाद किया हो या इवज लेकर गुलाम को आजाद किया हो। एक आदमी है, उसने गुलाम को वैसे ही आजाद कर दिया तो भी वला इसको मिलेगी, और एक आदमी है, उसने गुलाम से कहा 10 लाख रुपए ले आओ तो तुम आजाद हो, तो उसने माल लेकर गुलाम को आजाद किया तो भी वला इसको मिलेगी। चाहे इसने माल लेकर गुलाम को आजाद किया लेकिन इस आदमी की वजह से गुलाम को जिंदगी मिल गई, वो आजाद हो गया। बात समझ में आ गई? तो वला मुअतिक को मिलती है, और चाहे उसने गुलाम को माल लेकर आजाद किया हो चाहे बगैर माल के आजाद किया हो। लिहाजा एक आदमी एक गुलाम से अक्द किताबत कर लेता है कि जाओ 2 साल में 50 लाख रुपए कमा कर लाओ तो तुम आजाद हो। मुकातब गया और पैसे अदा करता रहा और उसने 50 लाख 2 साल में अदा कर दिए भाई, तो यह मुकातब आजाद हो गया। तो आप आका ने इसको वैसे आजाद किया है या इवज लेकर आजाद किया है? इवज लेकर आजाद किया है, लेकिन बहरहाल गुलाम को आजादी तो मिल गई। आजादी का तो कोई गुलाम तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन इस आका की वजह से उसको आजादी मिल गई। चाहे माल देकर ही आजादी मिली लेकिन आजादी तो मिल गई। लिहाजा यह आजाद शुदा मुकातब जो है इसकी वला इस आजाद करने वाले आका को मिलेगी। बात समझ में आ गई? मसला जिक्र हो रहा था एक गुलाम 2 आदमियों के दरमियान मुश्तरक है और एक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया और यह आजाद करने वाला मालदार है और दूसरे ने इसे जमान ले लिया। जब दूसरे ने इसे जमान ले लिया तो बाकी निसब गुलाम का मालिक भी यही मौतिक बन गया। अब यह मौतिक गुलाम से सही करवा सकता है, चाहे तो बाकी हिस्से को भी वैसे ही आजाद कर दे और चाहे तो बाकी गुलाम से सही करवा ले, उससे पैसे वसूल कर ले। लेकिन दोनों सूरतों में चाहे वो बाकी गुलाम को भी वैसे आजाद करे चाहे इवज लेकर आजाद करे यानी सही करवा के आजाद करे, ये सारे गुलाम का मौतिक बन गया। लिहाजा वला सिर्फ इसी को मिलेगी, वला सिर्फ इसी को मिलेगी। ये माना है, देखिए भाई कहते हैं फइंजम माना, अगर वो जो शरीक था उसने मौतिक को जामीन बना दिया, रजअल मौतिक अलल अब्दी, तो मौतिक रुजू कर सकता है गुलाम पर। वल वला लिल मौतिकी, और इस गुलाम की जो वला है लिल मौतिकी वो इस मौतिक के लिए होगी। गुलाम की सारी वला इस मौतिक के लिए होगी क्योंकि निस्फ गुलाम को इसने वैसे आजाद किया था और निस्फ गुलाम को सही करवा कर आजाद किया है। तो कहते हैं वल वला उलिल मौतिकी, और वला जो है वो मौतिक के लिए होगी। व इन आतका अबिस्तसा फल वला उबैनहुमा, तो हासिल कलाम अब तक जो बात हुई कि अगर मौतिक से जमान ले लिया जाए तो मौतिक गुलाम पर रुजू कर सकता है और फिर सारी वला इस मौतिक ही को मिलेगी। लेकिन अगर दूसरे शरीक ने मौतिक से जमान नहीं लिया बल्कि अपने हिस्से को भी वैसे ही आजाद कर दिया या उसने खुद ही गुलाम से सही करवा ली, तो इस सूरत में वो भी मौतिक बन गया। वो भी उसने अपना हिस्सा वैसे ही आजाद कर दिया तो भी वो मौतिक, और अगर उसने गुलाम से सही करवाई और माल की अदायगी पर गुलाम आजाद हुआ तो भी ये मौतिक बन गया। तो दोनों मौतिक बन गए, लिहाजा अब वला दोनों के दरमियान तकसीम होगी। उस शख्स के मरने के बाद अगर उसके और अजीज और अकारीब और रिश्तेदार न हुए तो फिर वला इन दोनों शरीकों के दरमियान तकसीम होगी। तो कहते हैं वह इन आतका अविस्तसा, और अगर इस शरीक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया अविस्तसा या उसने गुलाम से सही करवा ली, फल वला उबैनहुमा, तो वला जो है इन दोनों के दरमियान होगी क्योंकि दोनों मौतिक बन गए भाई। व इन कानल मौतिक मौसिरन, और अगर आजाद करने वाला तंग दस्त था, फशरीक बिल खियारी, तो शरीक को इख्तियार है, इंशा आतक व इंशा अस्तस अल अब्दा, अगर वो चाहे तो अपने हिस्से को आजाद कर दे, व इंशा अस्तस अल अब्दा, और अगर वो चाहे तो उस गुलाम से सही करवा ले। जब आजाद करने वाला तंग दस्त है तो उसे जमान नहीं लिया जा सकता, जब जमान नहीं लिया जा सकता तो बाकी 2 सूरतें रह गई कि वो शरीक क्या कर ले, अपने हिस्से को भी आजाद कर दे या अपने हिस्से में गुलाम से सही करवा ले। तो दोनों सूरतों में ये भी मौतिक बन जाएगा, अपना हिस्सा वैसे आजाद कर दे तो भी मौतिक, और सही करवा लेगा तो भी मौतिक बन जाएगा, लिहाजा इस सूरत में भी वला दोनों के अंदर तकसीम होगी भाई। तो कहते हैं वह इन कानल मौतिक मौसरन, और अगर आजाद करने वाला तंग दस्त था, फ शरी को बिल खियारी, तो शरी को इख्तियार है, इन शाह आता का, अगर वो चाहे तो आजाद कर दे अपने हिस्से को, वह इन शाह अस्तसाल आबदा, और अगर चाहे तो गुलाम से सही करवा ले, वल वला उबई नहुमा फिल वजहैनी, और वला दोनों के दरमियान तकसीम होगी, फिल वजहैनी दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में, यानी चाहे वैसे ही आजाद कर दे ये साकित या सही करवा ले, दोनों सूरतों में वला दोनों शरीकों में तकसीम होगी। वहां दाइंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और ये इमाम साहिब के नजदीक है। इमाम साहब के मजहब को एक दफा फिर दोहरा लें, इमाम साहब के नजदीक अगर एक गुलाम दो आदमियों के दरमियान मुश्तरक है, उन दोनों में से एक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया, तो ये जो मौतिक है इसको देखा जाएगा कि ये खुशहाल है या तंगदस्त है, अगर ये खुशहाल है तो इसे जमान भी लिया जा सकता है, और अगर ये तंगदस्त है तो इसे जमान नहीं लिया जा सकता। और इसके अलावा भी दो इख्तियार हैं वो साकित को कि वो अपने हिस्से को आजाद भी कर सकता है और उस गुलाम से सही भी करवा सकता है। तो इमाम साहब फरमाते हैं अगर मौतिक मालदार है तो शरीक को तीन चीजों का इख्तियार है, वो चाहे अपने हिस्से को वैसे ही आजाद कर दे, वो चाहे तो जमान वसूल कर ले, और वो चाहे तो गुलाम से सही करवा ले, और अगर मौतिक तंगदस्त है तो शरीक को दो इख्तियार हैं, वो चाहे तो अपने हिस्से को वैसे ही आजाद कर दे और वो चाहे तो गुलाम से सही करवा ले। अब आगे साहिबैन का मजहब आ रहा है भाई। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं लैस लहू इल्ला ज़मानु माल यसारी वसिआयतु माल इसार। साहिबैन इमाम साहिब से इख्तिलाफ करते हैं। इमाम साहब तो फरमाते थे कि शरीक को इख्तियार है, अगर मुआतिक मालदार है तो तीन चीजों का इख्तियार, और अगर मुआतिक तंगदस्त है तो दो चीजों का इख्तियार। साहिबैन फरमाते हैं नहीं, यहां अगर मौतिक मालदार है जी, तो फिर सिर्फ मौतिक से जमान वसूल किया जा सकता है, गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती। साहिबैन फरमाते हैं अगर मौतिक मालदार है तो उससे जमान वसूल किया जाएगा, गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती, और नीज एताक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एताक की तो तजज्जी ही नहीं है। तो जब एक आदमी ने अपने हिस्से को आजाद किया तो पूरा गुलाम ही आजाद हो गया जी। तो जब एक मौतिक ने अपने हिस्से को आजाद किया तो सारा गुलाम आजाद हो गया, तो दूसरे को एताक का इख्तियार ही ना रहा, एताक तो पूरा हो चुका है, और नीज अगर मौतिक मालदार है तो फिर गुलाम से सही भी नहीं करवा सकता। अब सिर्फ एक ही सूरत रह गई कि इस मालदार मौतिक से जमान वसूल कर लिया जाए, और अगर मौतिक तंगदस्त है तो फिर इस सूरत के अंदर सिर्फ गुलाम से सही करवाई जा सकती है। तवज्जो है, साहिबैन के नजदीक एक ने तो अपना हिस्सा आजाद कर दिया, लेकिन जब उसने अपना हिस्सा आजाद किया तो सारा ही गुलाम आजाद हो गया, लिहाजा दूसरे शरीक को एताक का इख्तियार ही नहीं है, एताक तो पूरा हो चुका है, और नीज सही कहते हैं जिस वक्त मौतिक मालदार हो तो उस वक्त गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती, मौतिक से ही जमान वसूल किया जाएगा, और गुलाम से सही सिर्फ उस वक्त करवाई जाएगी जब मौतिक तंगदस्त है, उससे वसूली नहीं हो सकती जी। उससे जमान वसूल नहीं हो सकता। तो साहिबैन फरमाते हैं यहां एक शख्स ने अपना हिस्सा आजाद किया है तो दूसरे को कोई इख्तियार नहीं है, दूसरे के सामने दो सूरतें बनेंगी, या तो यह मौतिक मालदार होगा या तंगदस्त होगा। अगर मौतिक मालदार है तो सिर्फ इससे जमान वसूल कर सकता है यह शरीक और कुछ नहीं कर सकता, और अगर मौतिक तंगदस्त है तो सिर्फ गुलाम से सही करवा सकता है और कोई इख्तियार इसको नहीं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं लैस लहू इल्ला ज़मानु, के शरीक के लिए नहीं है मगर जमान ही, माल यसारी मालदारी के साथ। यसार कहते हैं मालदारी और खुशहाली को, और आगे आ रहा है इसार भाई, इसार कहते हैं तंगदस्ती को। फिर सुनिए वकाला, साहिबैन फरमाते हैं लैस लहू इल्ला ज़मानु माल यसारी, कि शरीक के लिए सिर्फ जमान ही होगा, माल यसारी मौतिक की मालदारी के साथ। وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْصَارِ, اور شریک کے لیے سعی ہی ہوگی مَعَ الْإِعْصَارِ, معتق کی تنگ دستی کے ساتھ. معتق مالدار تو صرف زمان وصول کر سکتا ہے, معتق تنگ دست تو صرف غلام سے سعی کروا سکتا ہے, یہاں کوئی اختیار نہیں ہے اس شریک کو. تو کہتے ہیں وقالا, صاحبین فرماتے ہیں لیس لہ الا زمان مع الیساری, کہ اس شریک کے لیے صرف زمان ہی ہے معتق کی مالداری کے ساتھ. والسعایت مع الاعصاری, اور اس شریک کے لیے صرف سعی ہی ہے مع الاعصاری معتق کی تنگ دستی کے ساتھ. ولا یرجع المعتق علی العبد, نی صاحبین فرماتے ہیں کہ جب معتق مالدار ہے, شریک نے اسے زمان وصول کر لیا, تو امام صاحب فرماتے تھے یہ معتق غلام پر رجوع کر سکتا ہے, غلام سے سعی کروا سکتا ہے, لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں, یہ معتق جس نے زمان ادا کیا ہے یہ غلام پر رجوع نہیں کر سکتا. یہ غلام پر دراصل صاحبین کا ضابطہ ہے, آگے چل کے تفصیل بیان فرمائیں گے. صاحبین کا ضابطہ ہے کہ جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی, جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی, جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے. توجہ ہے, لہذا امام صاحب کے نزدیک پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا, امام صاحب فرماتے ہیں معتق کو زمان دینا پڑا, شریک نے معتق پہ رجوع کیا کہ تم نے میرا حصہ خراب کیا مجھے زمان دو, معتق مالدار تھا اس نے زمان ادا کر دیا, تو اب بھی معتق کیا کر سکتا ہے, غلام پر رجوع کر سکتا ہے کہ جاؤ میرے لیے پیسے کما کر لاؤ, میرے اتنا مال تمہاری وجہ سے دینا پڑا. تو دیکھو معتق کے مالدار ہونے کے باوجود غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی. لہذا شریک نے معتق سے زمان لے لیا, شریک نے اور معتق کیا تھا مالدار, تو جب معتق مالدار ہے اب یہ غلام پہ رجوع نہیں کر سکتا, کیونکہ معتق جب مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی. تو لہذا امام صاحب کے نزدیک معتق جب زمان ادا کر دے تو وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ معتق جب زمان ادا کر دے تو وہ غلام سے سعی نہیں کروا سکتا. تو کہتے ہیں ولا یرجع المعتق علی العبد, اور معتق جو ہے وہ غلام پر رجوع نہیں کر سکتا, یہ صاحبین کا مذہب چل رہا ہے بھائی. ولولا للمعتق, اور ولا ساری کی ساری معتق کے لیے ہوگی. صاحبین فرماتے ہیں امام صاحب نے تو بتلایا تھا کہ معتق اگر زمان دے دے, معتق اگر پھر ساری ولا معتق کے لیے ہوگی, ورنہ باقی تمام صورتوں میں ولا میں دونوں شریک ہوں گے, کیونکہ معتق نے اگر اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو دوسرے نے بھی اپنے حصے کو مال لے کر یا بغیر مال کے آزاد کیا ہے, تو ولا دونوں میں تقسیم ہوگی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, یہاں معتق نے اعتاق کیا اور اعتاق میں تجزی نہیں, تقسیم نہیں, تو جب اس نے اپنا حصہ آزاد کیا تو سارا غلام ہی آزاد ہو گیا, جب سارا غلام آزاد ہوا ہے تو معتق ہی کو ولا ملے گی, اس آزادی کے اندر شریک کا کوئی دخل نہیں ہے, لہذا اس کو ولا نہیں ملے گی. تو کہتے ہیں ولولا للمعتق, اور ولا جو ہے وہ ساری کی ساری للمعتق معتق کے لیے ہوگی. تو معلوم ہوا امام صاحب اور صاحبین کا تین چیزوں میں یہاں اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک دو شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو پھر اگر یہ معتق مالدار ہے تو دوسرے کو تین چیزوں کا اختیار, اور اگر یہ معتق تنگ دست ہے تو پھر دوسرے کو دو چیزوں کا اختیار ہے, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, اگر معتق مالدار ہے تو پھر شریک صرف اس سے زمان ہی لے سکتا ہے, غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی, اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر غلام سے سعی ہی کروائی جا سکتی ہے. اور نیز امام صاحب فرماتے ہیں معتق جب زمان ادا کر دے, معتق کو اگر زمان ادا کرنا پڑا تو وہ غلام پر رجوع کر سکتا ہے, اسے سعی کروا سکتا ہے, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, معتق نے جب زمان ادا کیا معلوم ہو وہ خوشحال ہے مالدار ہے, اور جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی. اور نیز ولا کے اندر بھی اختلاف کیا, امام صاحب فرماتے ہیں معتق نے جب زمان ادا کر دیا تو ساری ولا کا مستحق وہ بن گیا, لیکن اگر باقی دو صورتوں میں سے کوئی صورت پائی گئی कि शरीक ने अपने हिस्से को भी आजाद कर दिया या सही करवा ली, तो फिर शरीक भी मुआतिक बन गया, तो लिहाजा फिर वला दोनों में तकसीम होगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं एताक की तजजी नहीं हो सकती, जब मुआतिक ने एताक किया तो सारा गुलाम आजाद हो गया, तो सारी वला उसी मुआतिक को मिलेगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वहाजिहिल मसअलतु तबतनी अला हरफैनी। भाई इस मसले के अंदर इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ आया। अब साहिब हिदाया उसकी तफसील बयान फरमा रहे हैं कि यहां पर इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ इसलिए आया क्योंकि इमाम साहब और साहिबैन इख्तिलाफ करते हैं दो जाबतों के अंदर, दो जाबते हैं और दोनों में इमाम साहब और साहिबैन इख्तिलाफ करते हैं। पहला जाबता यह है कि क्या एताक की तकसीम हो सकती है या नहीं। इमाम साहब फरमाते हैं एताक की तकसीम हो सकती है और साहिबैन फरमाते हैं एताक की तकसीम नहीं हो सकती। और दूसरा जाबता यह है कि क्या जब मुअतिक मूसिर हो यानी खुशहाल हो, मालदार हो, तो क्या उस वक्त गुलाम से सही करवाई जा सकती है। इमाम साहब फरमाते हैं कि मुअतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सही करवाई जा सकती है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि मुअतिक जब मालदार हो तो फिर गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती
जी।
फिर सिर्फ जमान लिया जा सकता है। तवज्जो है। तो मालूम हुआ इस मसले में जो साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है उसकी बुनियाद दो जाबतों पर है। तो यही बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं वहादिहिल मसअलतु तबतनी अला हरफैनी, और इस मसले की बुनियाद दो उसूलों पर है। हर्फ, भाई हर्फ किनारे को कहते हैं लेकिन यहां इससे मुराद जाबता और उसूल है। हरफैनी दो किनारे मुराद है, दो उसूल और दो जाबते। तो कहते हैं वहाजहिल मसअलतु तबतनी अला हरफैनी, और इस मसले की बुनियाद दो उसूलों पर है। अहदुहुमा, उन दो उसूलों में से एक उसूल वो ये है, एक जाबता ये है, तजज्जुउल इताक व अदमुहू, इताक का तकसीम होना, व अदमुहू और तकसीम न होना। यानी इसमें साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है कि अताक तकसीम होता है या नहीं होता। तो कहते हैं अहदुहुमा, उन दो जाब्तों में से एक जाब्ता जो है, तजज्जुउल इताक व अदमुहू, वो इताक का तकसीम होना और तकसीम न होना है। अलामा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी। पिछले सबक में मुकम्मल तफसील बयान की थी साहिब हिदाया ने कि ये इख्तिलाफ क्यों है इमाम साहिब और साहिबैन में। वसानी, और दूसरा जाबता जो है कि अन्न यसार अल मुअतिकी, कि मुअतिक की मालदारी, ला यमनउ सियायत अल अब्दी, ये गुलाम की सही के लिए मानिअ नहीं है। इंदहू, इमाम साहिब के नजदीक, इमाम साहिब के नजदीक मुअतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सही करवाई जा सकती है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि मुअतिक अगर मालदार है तो सिर्फ मुअतिक से जमान वसूल किया जा सकता है, गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती। तो कहते हैं वसानी, और दूसरा जाबता यह है कि अन्न यसार अल मुअतिकी, के मुअतिक की मालदारी, ला यमनउ सियायत अल अब्दी, ये गुलाम की सही को मना नहीं करती। इंदहू, इमाम साहिब के नजदीक, वइंदहुमा यमनउ, और साहिबैन के नजदीक मुअतिक की मालदारी गुलाम की सही को मना करती है। लहुमा फिस्सानी, अब साहिबैन की दलील आ गई। भाई पहला इख्तिलाफ किस जाबते में है कि एताक की तजज्जी हो सकती है या नहीं, उसकी तफसील पीछे गुजर चुकी। दूसरा इख्तिलाफ इस कानून में है कि मुअतिक अगर मालदार हो तो क्या गुलाम से सही करवाई जा सकती है या नहीं। इमाम साहब फरमाते हैं मुअतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सही करवाई जा सकती है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं मुअतिक अगर मालदार हो तो गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती। अब इसमें साहिबैन की दलील जिक्र फरमा रहे हैं। भाई कहते हैं लहु माफी सानी, साहिबैन की दलील दूसरे जाब्ते में, कौलहू अलैहि सलातु वस्सलाम, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है, फिर रजुली, उस आदमी के बारे में, युअतिकु नसीबहू, जो अपने हिस्से को आजाद कर दे। आगे हदीस शुरू हो रही है, इन कान गनियन जमीना व इन कान फकीरन साआफी हिस्सतिल आखर, ये है हदीस के अल्फाज। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस आदमी के बारे में फरमाया जो अपने हिस्से को आजाद कर दे। तो हुजूर उसके बारे में फरमाते हैं इनकान गनीयन जमीना, अगर ये आजाद करने वाला मालदार है जमीना तो ये जामिन होगा। वह इनकान फकीरन, और अगर ये आजाद करने वाला फकीर है सआफी हिस्सतिल आखरी, तो गुलाम दूसरे के हिस्से में सई करेगा
जी।
तो गुलाम दूसरे के हिस्से में सई करेगा भाई। तो ये साहिबैन की दलील है। साहिबैन फरमाते हैं देखो इस हदीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकसीम फरमाई है कि अगर आजाद करने वाला मालदार है तो उस पर जमान आएगा, और अगर आजाद करने वाला तंगदस्त है तो गुलाम पर सई लाजिम होगी भाई। तो हुजूर ने तकसीम फरमा दी, मालूम हुआ मुअतिक मालदार हो तो जमान आएगा, गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती, और मुअतिक तंगदस्त है तो गुलाम से सई करवाई जाएगी, मुअतिक से जमान नहीं लिया जा सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकसीम फरमा दी है कि मुअतिक को देखा जाएगा, मालदार है तो जमान लेंगे, मालूम हो सई नहीं, और मौतिक तंगदस्त है तो गुलाम से सई करवाएंगे, मालूम हो उस मौतिक पर जमान नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकसीम फरमाई है, जबकि इमाम साहिब शिरकत बयान फरमा रहे हैं। इमाम साहब फरमाते हैं कि मौतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सई करवाई जा सकती है, तो मौतिक तंगदस्त हो तब भी सई करवाई जाएगी गुलाम से, और मौतिक मालदार हो तब भी गुलाम से सई करवाई जा सकती है। ये तो दोनों के अंदर शिरकत आ गई, दोनों सई के अंदर शरीक हो गए, चाहे मौतिक मालदार हो चाहे तंगदस्त हो, दोनों सूरतों में गुलाम की सई में शिरकत आ रही है, और हालांकि शिरकत तो तकसीम के मुनाफी है। हदीस में तो तकसीम बयान हुई है, हदीस में तो बयान हुआ कि अगर मुअतिक तंगदस्त है फिर गुलाम से सई करवाई जा सकती है
जी।
बात समझ में आ गई, तो हदीस में तकसीम है और इमाम साहेब शिरकत को बयान फरमा रहे हैं, और तकसीम शिरकत के मुनाफी है, दोनों में मुनाफात है, तकसीम है तो शिरकत नहीं, और शिरकत है तो तकसीम नहीं है भाई। एक वक्त में दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती, दोनों में मुनाफात है भाई। लिहाजा हदीस पर अमल किया जाएगा, और जब मौतिक मालदार हो तो गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती। तो कहते हैं लहू माफिसानी, साहिबैन की दलील जो है दूसरे जाब्ते में कौलहू अलैहि सलातु वस्सलाम, वो हुजूर अलैहि सलाम का कौल है फिर रजुल युअतिकु नसीबहु, उस आदमी के बारे में जो अपने हिस्से को आजाद कर दे, उसके बारे में हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इनकान गनीयन जमीना, कि अगर वो मौतिक मालदार है तो वो जामिन होगा, व इनकान फकीरन, और अगर वो मौतिक फकीर है सआफी हिस्सतिल आखरी, तो गुलाम दूसरे के हिस्से में कोशिश करेगा। कासामा, हुजूर अलैहि सलाम ने तकसीम फरमाई, साहिबैन की दलील चल रही है, साहिबैन फरमाते हैं कासामा हुजूर अलैहि सलाम ने तकसीम फरमाई है, वल किस्मतु तुनाफी शिरकता, और तकसीम जो है वो शिरकत के मुनाफी है, लिहाजा यहां शिरकत नहीं हो सकती। मौतिक जब मालदार हो तो गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती। अब आगे इमाम साहिब की दलील आ रही है, व लहू, इमाम साहिब की दलील यह है, इधर देखिए इमाम साहिब की दलील को समझ लें भाई। इमाम साहिब फरमाते हैं कि मौतिक ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया और इसकी वजह से दूसरे का हिस्सा भी खराब हो गया, अब दूसरा इसको गुलाम बनाकर भी नहीं रख सकता और दूसरा इसको बेचकर अपने हिस्से की कीमत भी वसूल नहीं कर सकता, तो मौतिक के एताक की वजह से इस गुलाम के अंदर शरीक की मालियत जो है वो बंद हो गई। इस गुलाम के अंदर दूसरे शरीक का जो हिस्सा था उसकी मालियत गुलाम के अंदर बंद हो गई, तो लिहाजा गुलाम से जमान वसूल किया जा सकता है। भाई देखिए ना, मौतिक ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया तो दूसरे शरीक की कुछ मालियत गुलाम में बंद हो गई, अगरचे इसमें गुलाम का कोई दखल नहीं है, गुलाम के इख्तियार से ऐसा नहीं हुआ और गुलाम का इसमें कोई दखल नहीं है, लेकिन फिर भी गुलाम के अंदर तो मालियत बंद हो गई शरीक की, लिहाजा शरीक उस गुलाम से जमान वसूल कर सकता है कि जाओ जाकर सही करो, पैसे कमाओ और मेरे हिस्से की कीमत अदा करो। इमाम साहब फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे तेज आंधी चले और किसी कपड़े को उड़ाए और किसी के रंग में उस कपड़े को डाल दे। तो अब एक शख्स का कपड़ा था वो तेज आंधी से उड़ा और दूसरे शख्स के रंग में जाकर गिरा और वो कपड़ा रंगदार हो गया। तो अब देखो उस रंग वाले की कुछ मालियत इस कपड़े के अंदर बंद हो गई, इस रंग वाले की कुछ मालियत कपड़े के अंदर बंद हो गई, लिहाजा यह रंग वाला कपड़े के मालिक से जमान वसूल कर सकता है। अगरचे कपड़े के मालिक का इसमें कोई दखल नहीं है, हवा ने वो कपड़ा उड़ाया और दूसरे के रंग में ले जाकर डाल दिया है, लेकिन फिर भी उस कपड़े वाले के कपड़े में दूसरे की कुछ मालियत बंद हो गई है, चाहे गैर इख्तियारी तौर पर कुछ मालियत बंद हुई है लेकिन बहरहाल मालियत बंद तो हुई है, लिहाजा रंग वाला उससे जमान वसूल कर सकता है भाई। वलहू, अरे इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्नहु इहतबसत मालियतु नसीबिही, इहतबसा का माना बंद होना, अन्नहु इहतबसत मालियतु नसीबिही के शरीक के हिस्से की मालियत बंद हो गई है, इंदल अब्दी गुलाम के पास, फलहू अयुजमिनहु, तो लिहाजा इस शरीक के लिए जायज है कि वो उस गुलाम को जामीन बना दे और उसे सही करवाए। कमा इदा हब्बतिर रीहु बिसौबी इंसानिन, हब्बा यहुब्बु हुबूबन का माने हवा का चलना, कमा इदा हब्बतिर रीहु बिसौबी इंसानिन, जैसे तेज हवा किसी इंसान के कपड़े को लेकर चली, व अलकतहु फी सिबगी गैरिही, और उसको किसी दूसरे के रंग में डाल दिया। याद रखो रेह का लफ्ज, अरबी में रेह का लफ्ज आमतौर पर तेज हवा और आंधी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि खुशगवार हवा के लिए अमूमन अरबी में रियाह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कमा इदा हब्बतिर रीहु बिसौबी इंसानिन, जैसे तेज हवा किसी इंसान के कपड़े को लेकर चली, व अलकतहु फी सिबगी गैरिही, और उसको किसी दूसरे के रंग में डाल दिया, हत्तन सबगा बिही, यहां तक कि उसे वो कपड़ा रंग वाला हो गया, कपड़ा रंगदार हो गया। इन सबगा भाई स्वाद के साथ, इन सबगा यन सबिगो, इन सिबाह का माना रंगदार होना। तो कहते हैं हत्तन सबगा बिही, यहां तक कि कपड़ा उसे रंगदार हो गया, फाला साहिबी सौबी, तो उस कपड़े के मालिक पर वाजिब है कीमत सिबगिल आखरी, दूसरे के रंग की कीमत, मुसिरन कान औ मौसिरा, चाहे वो कपड़े वाला मालदार हो या तंगदस्त हो, तो कपड़े वाले पर दूसरे के रंग की कीमत वाजिब है, चाहे कपड़े वाला मालदार हो चाहे तंग दस्त हो, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कही जी। साहिबे हिदायत फरमा रहे उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि रंग वाले की कुछ मालियत कपड़े में बंद हो गई है, अगरचे गैर इख्तियारी तौर पर बंद हुई है लेकिन मालियत तो कपड़े में बंद हो गई, लिहाजा वो कपड़े के मालिक से जमान वसूल कर सकता है भाई, चाहे वो कपड़े वाला मालदार हो चाहे तंग दस्त हो भाई। तो कहते हैं लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कही, फकजा हा हुना, तो इसी तरह यहां पर भी होगा, जिस तरह उसके कपड़े में गैर इख्तियारी तौर पर कुछ दूसरे का माल बंद हो गया तो वो उससे जमान वसूल कर सकता है, इसी तरह यहां गुलाम के अंदर भी गुलाम के इख्तियार के बगैर उसके गुलाम के अंदर एक शरीक का कुछ माल बंद हो गया है, लिहाजा वो गुलाम से जमान वसूल कर सकता है, और जिसके पास माल बंद हुआ हो चाहे वो खुशहाल हो चाहे तंग दस्त हो, और यहां पर गुलाम है वो तो गुलाम तो किसी चीज का मालिक नहीं होता, तो यहां वो तंग दस्त है लेकिन चाहे तंग दस्त ही क्यों ना हो फिर भी उससे जमान लिया जा सकता है, लिहाजा इस गुलाम से भी जमान वसूल किया जा सकता है, इससे सही करवाई जा सकती है। बात समझ में आ गई, जिस तरह उस रंग से कपड़े को फायदा हुआ था इसी तरह यहां इस आजादी से गुलाम को फायदा हुआ है, अब वो आजाद होने वाला है तो लिहाजा दोनों से जमान वसूल किया जा सकता है। तो कहते हैं फकदा हा होना, तो इसी तरह यहां पर भी होगा, इल्ला अन्नल अब्द फकीर, मगर ये कि गुलाम तो फकीर है भाई, इन्होंने बतलाया कि रंग वाला कपड़े वाले से जमान ले सकता है अगरचे कपड़े वाला तंग दस्त हो या मालदार हो, और यहां तो गुलाम का मसला है और गुलाम तो फकीर है, गुलाम तो किसी चीज का मालिक नहीं होता, उसके पास जो कुछ होता है वो उसके आका का होता है, तो गुलाम तो यहां फकीर है यानी तंगदस्त है, तो फिर गुलाम से साई करवाई जाएगी। तो कहते हैं इल्ला अन्नल अब्द फकीर, मगर यह कि गुलाम तो फकीर है, फयस्तसई ही, तो यह शरीक जो है गुलाम से सई करवा सकता है। तो हासिल कलाम ये कि इमाम साहेब के नजदीक मुअतिक मालदार ही क्यों ना हो, फिर भी शरीक जो है गुलाम से सई करवा सकता है, क्योंकि शरीक की कुछ मालियत जो है उस गुलाम के अंदर बंद हो गई है, अगरचे गैर इख्तियारी तौर पर बंद हुई है, लेकिन बहरहाल मालियत तो बंद हुई है, तो वो उस गुलाम से जमान वसूल कर सकता है यानी उससे सई करवा सकता है। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि साहिबैन ने तो अपने मजहब की ताइद में हदीस जिक्र फरमाई और उसके मुकाबले में इमाम साहिब कियास जिक्र फरमा रहे हैं, और हदीस के मुकाबले में तो कियास का जिक्र करना बातिल है। तो जवाब याद रखना भाई, जवाब उसका यह है कि यहां पर हदीस के अंदर सिर्फ इतना जिक्र है, वह इनका न फकीरन साफी हिस्सतिल आखरी, कि अगर वह मौतिक तंगदस्त है, फकीर है, तो साफी हिस्सतिल आखरी, तो गुलाम दूसरे के हिस्से में सई करेगा। मालूम हुआ मौतिक तंगदस्त हो तो गुलाम से सई करवाई जा सकती है, लेकिन अगर मौतिक मालदार हो तो फिर क्या गुलाम से सई करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती, उसके बारे में यह हदीस खामोश है
जी।
यह हदीस खामोश है, इस हदीस में सिर्फ इतना जिक्र है अगर मौतिक तंगदस्त हो तो गुलाम से सई करवाई जा सकती है, लेकिन अगर मौतिक मालदार है तो क्या फिर गुलाम से सई करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती, उसका जिक्र इस हदीस में नहीं है, तो उसको और दलील के जरिए साबित किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो इमाम साहब जो कियास जिक्र फरमा रहे हैं ये हदीस के मुकाबले में नहीं है भाई, इमाम साहब उस चीज को कियास से साबित कर रहे हैं जिसका हदीस में जिक्र ही नहीं है सिरे से। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, सुमल मोतबरु यसारु तैसीर व हुआ अयम लिका मिनल माली कदर कीमती नसीबिल आखर ला यसारुल गीना। भाई इन्होंने जिक्र किया कि अगर मौतिक मालदार हो तो उसे जमान लिया जा सकता है, और अगर मौतिक तंगदस्त है तो फिर उसे जमान नहीं लिया जा सकता। तो ये मौतिक के मालदार होने से क्या मुराद है, कितनी मालदारी मुराद है? तो जवाब देंगे साहिबे हिदाया कि यहां यसारु तैसीर मुराद है, यसारुल गीना नहीं। भाई यसार का लफ्ज पीछे भी आया, यसार का वैसे माना है मालदारी और खुशहाली, भाई मालदारी और खुशहाली, लेकिन यहां यसार का तर्जमा गुंजाइश और फराखी के कर लें। यसार का क्या तर्जमा करें? फराखी और गुंजाइश और इसी तरह वुसअत, भाई तो फिर लफ्जी तर्जमा सही हो जाएगा। एक है यसारु तैसीर और एक है यसारुल गीना। यसारु तैसीर यह है कि मौतिक जो है अपनी हाजात असलिया से जायद इतने माल का मालिक है कि जिसके जरिए जमान अदा किया जा सकता है, और एक है यसारुल गीना मालदारी वाली गुंजाइश के मालदार हो। कहते हैं नहीं, यसारुल गीना यहां मुराद नहीं है बल्कि यसारु तैसीर है भाई, यानी इतने माल का मालिक हो कि दूसरे के हिस्से की कीमत के बकदर वो बनता हो, तो इसको मालदार शुमार किया जाएगा और इससे जमान वसूल किया जा सकता है, इसमें खूब मालदार होना जरूरी नहीं है। तो यसारु तैसीर, यसार का क्या माना किया? गुंजाइश और फराखी, और तैसीर का माना है सहूलत। यसारु तैसीर सहूलत वाली गुंजाइश, सहूलत वाली वसअत, और एक है यसारुल गीना मालदारी वाली गुंजाइश, मालदारी वाली वसअत भाई। तो कौन सी मालदारी मुराद है? यसारु तैसीर मुराद है, यसारुल गीना मुराद नहीं है भाई। देखिए साहिब हिदायत और वजाहत फरमाएंगे, कहते हैं सुम्मल मोतबरु यसारु तैसीरी, फिर वो जो मोतबर है वो सहूलत वाली गुंजाइश है। सहूलत वाले वुसअत जो है वो यहां पर मोतबर है, उसका एतबार किया गया है। भाई वो यसारु तहसीर क्या है, सहूलत वाली गुंजाइश क्या है, अब वो आगे बयान कर रहे हैं। वह हुआ और वो ये है, अयमलिका के मौतिक जो है वो मालिक हो, मिनल माली माल में से, कदरा कीमती नसीबिल आखरी दूसरे के हिस्से की कीमत के बकदर, कि वो दूसरे के हिस्से की जो कीमत बनती है उसके बकदर माल का मालिक हो। भाई बात समझ में आ गई, कहते हैं वह हुआ अयमली का मिनल माली कदर कीमती नसीबिल आखरी, और वो ये कि मौतिक जो है दूसरे के हिस्से की जो कीमत बनती है उसके बकदर माल का मालिक हो। ला यसारुल गीना, यहां यसारुल गीना मोतबर नहीं, यानी मालदारी वाली गुंजाइश मोतबर नहीं। मालदारी वाली गुंजाइश, भाई शरीयत में मालदार किसे शुमार किया जाता है? शरीयत में उस शख्स को मालदार शुमार किया जाता है जो मुस्तहिक ज़कात नहीं है। वो मालदार है जब भी उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो याद रखो, पीछे आप पढ़ चुके हैं, एक है वुजूब ज़कात का निसाब और एक है हिरमान ज़कात का निसाब। ज़कात किस शख्स पर वाजिब होगी? कि उसके पास माल नामी मौजूद हो निसाब के बकदर और उस पर साल गुजर जाए। और माल नामी चार चीजें हैं सिर्फ, सोना, चांदी, करंसी और माल तिजारत। सोना, चांदी, करंसी और माल तिजारत, ये चार चीजें अगर किसी के पास इतनी हैं कि उनकी कीमतें मिलाई जाएं तो 52.5 तोले चांदी तक उनकी कीमत पहुंच जाए, तो ये निसाब के बकदर माल है और इस पर साल गुजर जाए तो इस शख्स पर ज़कात वाजिब होती है। और एक है हिरमान ज़कात का निसाब, कि जिस शख्स के पास इतना माल हो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। और इसके अंदर आपने पढ़ा था, पीछे मसले में जिक्र हुआ था कि इसके अंदर माले नामी को सिर्फ नहीं देखा जाएगा बल्कि माले नामी के साथ साथ गैर नामी माल को भी देखा जाएगा, यानी इस शख्स की, इस शख्स की हाजत असलिया से जायद जो चीजें हैं उनकी कीमत भी मिलाई जाएगी, उनकी कीमत भी मिलाई जाएगी। मसलन मैंने बतलाया था, जैसे एक शख्स ने घर में महंगे बर्तन रखे हुए हैं, महंगे बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन ये बर्तन ऐसे हैं कि साल भर इस्तेमाल में ही नहीं आते, तो ये भी जरूरत असलिया से जायद हैं, इनकी भी कीमत लगाई जाएगी। इसी तरह और हाजत से जायद चीजें जितनी होंगी वो सारों की कीमत उसमें मिलाई जाएगी भाई। और वो अगर 52.5 तोले चांदी तक उनकी कीमत पहुंच जाए तो ये शख्स मुस्तहिक ज़कात नहीं है, यानी ये मालदार शुमार होगा, इसको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो यहां पर जो मौतिक की यसार जिक्र हो रहा है उससे यसारु तैसीर मुराद है, यसारुल गीना मुराद नहीं। यसारुल गीना उसमें तो जरूरत से जायद माल होगा कि उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही है, और यसारु तहसीर कि वो अपनी हाजात असलिया से जायद इतने माल का मालिक हो जिसके जरिए वो दूसरे के हिस्से की अदायगी कर सके। तो मालूम हुआ यसारु तहसीर जो है, सहूलत वाली जो गुंजाइश है वो थोड़े माल से ही हासिल हो जाएगी, और यसारुल गीना वो वाली मालदारी ज्यादा माल से हासिल होगी। तो यसारु तहसीर का यहां एतबार किया गया है, यानी मौतिक इतने माल का मालिक हो जिसके जरिए वो जमान अदा कर सके, वो इतने माल का मालिक हो कि जिसके जरिए वो जमान अदा कर सके, बस ये यसारु तहसीर ही इसी का एतबार किया गया है, तो इसको मालदार शुमार किया जाएगा और इससे जमान वसूल किया जा सकता है। जबकि यसारुल गीना उसमें तो ज्यादा माल चाहिए होगा भाई, उसका एतबार यहां पर नहीं किया गया भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं सुम्मल मोतबरु यसारु तैसीरी, फिर मोतबर जो है वो सहूलत वाली गुंजाइश है। वह हुआ अयम लिका मिनल मालिक कदर कीमत नसीबिल आखरी, और वो ये कि मोतिक मालिक हो दूसरे के हिस्से की कीमत के बकदर माल का। ला यसारुल गीना, यहां मालदारी वाली गुंजाइश मोतबर नहीं। लिअन नबी यातदिलु नजरु मिनल जानिबैनी, लिअन्न बिही, इसलिए क्योंकि यसारे तहसीर के जरिए या अतदिलु बराबर होगी। अन नजरु, नजर का तर्जमा चाहे शफकत के कर लें चाहे रियायत के कर लें। लिअन्न बिही या अतदिलु नजरु, इसलिए क्योंकि यसारु तहसीर के जरिए या तदिलु नजरु मिनल जानिबैनी, दोनों जानिब की रियायत बराबर होगी। यसारु तहसीर में दोनों जानिब की रियायत बराबर होगी, तो लिहाजा यहां यसारु तहसीर का एतबार किया गया क्योंकि इसमें दोनों की रियायत है, मुअतिक की भी रियायत है और उसके शरीक की भी रियायत है। यसारु तहसीर में मुअतिक की रियायत इस तरह है कि वो गुलाम को आजाद करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता था। भाई आप जब भी नेकी करते हैं तो नेकी की वजह से इंसान के दरजात अल्लाह बुलंद फरमाते हैं और वो इंसान अल्लाह के करीब होता चला जाता है। तो यहां पर भी इस मुअतिक ने अपने हिस्से के गुलाम को आजाद करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा, तो उसको भी हमने साबित कर दिया कि इसने निसफ आजाद किया है तो वो निसफ आजाद हो गया। और वो दूसरा शख्स जो है वो इस मुअतिक से जमान ले लेगा तो उसको भी उसका हक मिल जाएगा। तो दोनों की रियायत हो गई, मुअतिक का मकसद भी हासिल हो गया कि अल्लाह का कुर्ब उसे मिल जाए और जो दूसरा शरीक था उसके हक भी उसको मिल गया। भाई तो इसमें दोनों की रियायत है। लेकिन अगर इसके बजाय यसारुल गीना का हमें एतबार करे दे तो यसारुल गीना के अंदर तो सिर्फ आपने गोया मुअतिक की रियायत की है कि उसके पास खूब सारा माल हो तो फिर ही उससे जमान लिया जा सकता है, वैसे उससे जमान लिया ही नहीं जा सकता। तो इसमें तो सिर्फ मुअतिक की रियायत है भाई, लिहाजा यहां यसारु तहसीर का एतबार किया गया कि यह मुअतिक बस इतने माल का मालिक हो जिसके जरिए जमान अदा कर सकता है तो इसको मालदार शुमार किया जाएगा और इससे जमान वसूल किया जा सकता है। अब इसमें दोनों की रियायत हो गई, बात समझ में आ गई। कहते हैं लिअन्न बिही यातदिलु नजरु मिनल जानिबैनी, इसलिए क्योंकि यसारु तहसीर के जरिए दोनों जानिब की बराबर रियायत होगी। बितहकीक मा कसदहुल मुअतिक मिनल कुर्बती, किस तरह दोनों की रियायत होगी? भाई देखिए ना, यसारु तहसीर वो थोड़े माल से ही हो जाएगी और यसारुल गिना में ज्यादा माल चाहिए। जब आप ज्यादा माल का लिहाज रख रहे हैं इसका मतलब है आपने सिर्फ मौतिक का ख्याल रखा, और जब यसारु तहसीर उसके अंदर थोड़ा सा भी माल हो, बस इतना हो जिससे वो क्या कर सके, दूसरे के हिस्से की कीमत अदा कर सके, तो आप कहेंगे कि अब ये उससे जमान ले सकता है क्योंकि इसके पास इतना माल जरूरत असलिया से जायद मौजूद है। तो इसमें दोनों की रियायत हो गई कि मौतिक जो है उसने आजादी के जरिए अल्लाह के कुर्ब का इरादा किया था, अजर व सवाब का इरादा किया था, तो उसकी भी रियायत हो गई और नीज दूसरे की भी रियायत हो गई कि उसको उसका हक मिल जाएगा। उसका जो माल गुलाम के अंदर बंद हो गया था उसका जमान वो इस शख्स से वसूल कर लेगा, तो दोनों की रियायत हो गई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बितहकीक मा कसदहुल मुअतिक मिनल कुर्बती, तहकीक का माना है साबित करना। बितहकीक मा कसदहुल मुअतिक, जिस चीज का मुअतिक ने इरादा किया हो उसको साबित करते हुए, मिनल कुर्बती यानी के कुर्बत अल्लाह का कुर्ब और अजर व सवाब भाई, व ईसाली बदली हक साकिती इलैही, औसला यूसिलु ईसाल का माना पहुंचाना, व ईसाली बदली हक साकिती इलैही, और वो जो साकित है खामोश है उसके हक का जो बदल है वो उसको पहुंचाते हुए जी। उसका जो हक बनता था गुलाम में उसका बदल उसको मिल गया, उसको जमान वसूल हो गया भाई। बात समझ में आ गई। ये तर्जमा एक दफा फिर देख लीजिए भाई। कहते हैं लिअन्न बिही यातदिलु नज़रु मिनल जानिबैनी, इसलिए क्योंकि यसारु तहसीर की सूरत में दोनों जानिब की रियायत बराबर होगी। बितहकीक मा कसदहुल मुअतिक मिनल कुर्बती, वो कुर्बत जिसका मुअतिक ने इरादा किया है उसको साबित करते हुए, व ईसाली बदली हक साकिती इलैही, और साकित को उसके हक का बदल पहुंचाते हुए। यहां तक बात समझ में आ गई, बाकी फिर इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।